बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों। इस दुआ के साथ कि हमारे नन्हे फरिश्ते बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, हमेशा की तरह दिलचस्पी के साथ बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, हम भी हमेशा की तरह वक्त की पाबंदी के साथ आ गए हैं आपके घरों में। और मुझे पूरी पूरी इस बात की उम्मीद है कि जनाब आप लोग प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तक, बिल्कुल आखिरी सेकेंड तक हमारा साथ देंगे। शाबाश। और जिस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे हमारे अजीज दोस्त गिलगिली साहब। और यहाँ पर गिलगिली बड़े उदास से हैं, खाना नहीं बनाती। कौन खाना नहीं बनाती? चलो पता नहीं, खैर देखते हैं, पूछते हैं इनसे भाई आज माजरा क्या है। ठीक गिलगिली, कैसे हो तुम? ठीक हो दोस्त? अस्सलामुअलैकुम। ये ढीला सलाम भाई क्या है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? एनर्जी के साथ? नहीं क्यों, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारी अम्मी हाँ उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया? लेकिन क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी अम्मी माशाल्लाह इतनी घरेलू खातून है और उनका खाना तो वक्त पर तैयार रहता है। तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी अम्मी ने खाना बनाया होगा। नहीं बनाया? तुमने कुछ भी नहीं खाया? कैसा हो सकता है? हाँ कुछ भी नहीं, और तुम्हें भूख भी लगी है? ओ चलो ये हिस्सा ख़त्म होगा, मैं तुम्हें कुछ ला दूँगी खाने के लिए। लेकिन गिलगिली की अम्मी ने खाना नहीं बनाया और तुम्हें, चलो लेकिन तुमने अपनी अम्मी से कहा कि खाना क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं कुछ भी नहीं कहा तुमने उनको, और तुम उदास होकर यहाँ पर आ गए। मैं पूछूँ उनसे? एक काम करते हैं, तो देखते हैं माजरा क्या है यहाँ पर। ये बच्चा भी इतना उदास बैठा हुआ यहाँ पर। खैर रिंग जा रही है दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम गिलगिली की अम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ जी दोस्त, सब खैर खैरियत से। वो मुझे एक सवाल पूछना था। गिलगिली यहाँ पर आया और कह रहे कि मेरी अम्मी मुझे बिल्कुल नहीं चाहती हैं, और कुछ उदास शक्लें बनाए बैठा है यहाँ पर, और कह रहे कि आज आपने उसे खाने को भी कुछ नहीं दिया। तो कोई ख़ास बात है, कोई मसला है क्या? क्या कब? पूरी रात? ओह इसलिए? नहीं, वो गिलगिली मेरे ख्याल से गलत फहमी का शिकार हो गया। बिल्कुल जी, ज़रूर उसे गलत फहमी हुई है, मैं बताती हूँ उसको भी। बिल्कुल जी, खुदाफिस। जी बिल्कुल खुदाफिस। अरे गिलगिली तुम भी ना, गिलगिली कह रहे मेरी अम्मी ने खाना नहीं बनाया और यहाँ मुँह लटकाए बैठे हैं कि इनकी अम्मी तो बिल्कुल कुछ आती नहीं है, इनसे मोहब्बत नहीं करती। गिलगिली तुम्हें पता है कल रात को जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारी बहन जो है, ठीक है, तुम्हारी बहन के पेट में अचानक दर्द हुआ और वो रोना शुरू हुई। हाँ तुम्हारी बहन वो रोना शुरू हुई तो तुम्हारी अम्मी को उसने बुलाया, अम्मी अम्मी मेरे पेट में दर्द है। और तुम्हारी अम्मी पूरी रात तुम्हारे बहन के सिरहाने बैठकर, ठीक है, उसकी तीमारदारी करती रही हैं, उसको जो है यहाँ पर वो पानी वगैरह जो उसको ज़रूरत थी वो दी है। उसे पेट में दर्द भी था और तुम्हारी बहन को बुखार भी था। बेचारी बार बार उसके सर पर वो जो गीली पट्टियाँ होती हैं वो लगा रही थी, पूरी रात जागी हैं। और जब सुबह सारी सी बात है, थकन के मारे कौन काम कर सकता है फिर, और तुम यहाँ बैठे कह रहे हो मेरी अम्मी ने खाना नहीं बनाया, मेरी अम्मी मुझे चाहती नहीं है। ये क्या बात हुई? पूरी बात है ना, तुम्हें जाकर अपनी अम्मी से पूछना चाहिए, अम्मी जान आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया है, खैरियत तो है, क्या मसला है ना? ऐसा करना चाहिए ना। आप लोग देखें यहाँ पर एक हिस्सा, ठीक है, जब तो मैं इसे कुछ खाने को देती हूँ। जाओ मैं तुम्हें खाने को देती हूँ कुछ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बच्चों आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं ये है मैक के बारे में। मैक कौन था? मैक एक लकड़हारा था। अब आप पूछेंगे लकड़हारा किसे कहते हैं? लकड़हारा कहते हैं उसको जो लकड़ियाँ काट के अपनी गुजर औकात करता है, लकड़ियों से फर्नीचर बनाता है, लकड़ियों से जो है ईंधन का सामान बनाता है, उसे लकड़हारा कहते हैं, कि जो खुलासे के जो लकड़ियाँ काटता है जंगल में जाकर। तो मैक जो है वो एक लकड़हारा था और उसका काम यही था, सर्दियों में जो है वो दरख्त काटता था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता था ताकि उससे ईंधन बनाने में काम आए, उससे जो है वो उसको वो जला कर अपने आप को, अपने घर को गर्म रख सके। और सर्दियों के बाद जब बाहर का मौसम आता था तब वो लकड़ियों को काटता था ताकि उससे अच्छा फर्नीचर बना सके, पलंग बना सके सोने के लिए, और कुर्सी बना सके, मेज़ बना सके, और मुख्तलिफ चीज़ें। अब होता ये है कि एक दफा जो है वो सर्दियों का मौसम होता है और मैक जो है वो जाता है जंगल में ताकि लकड़ियां काटे और उसको लेकर घर पर आ सके और फिर उससे घर को गर्म करने का सामान कर सके। मैक जो है वो जाता है जंगल में और लकड़ियां काटता है, एक दरख्त काट के घर पर ले आता है और जो है वो उससे जो है वो जलाता है, अपने घर को गर्म करता है और आराम से और सुकून से रहता है। लेकिन उस साल सर्दियां बहुत शदीद होती हैं, बहुत जोर का तूफान आता है और जितनी लकड़ियां उसने अपने घर में जमा की होती हैं सब खत्म हो जाती हैं। मैक को एक दफा फिर से जंगल जाना पड़ता है, लकड़ियां काट के लानी पड़ती हैं। लेकिन अब होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तादाद जंगल में कम होती जा रही होती है, क्योंकि दरख्तों को हमेशा मैक काट लेता है और कभी जो है उसने सोचा ही नहीं होता कि भाई मैं ये दरख्त काट रहा हूँ, आखिर एक दिन तो ऐसा आएगा कि तमाम दरख्त खत्म हो जाएंगे। बहरहाल सर्दियों का मौसम गुजर जाता है और बहार का मौसम आता है। बहार में जब मैक जाता है और सारी लकड़ियाँ काट के ले आता है फर्नीचर बनाने के लिए, फिर उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसके पास आते हैं, मैक का फर्नीचर सबको बहुत पसंद होता है। अब जब मैक जाता है जंगल में दोबारा से लकड़ियाँ काटने तो कोई दरख्त ही नहीं बचा होता जिससे वो लकड़ियाँ काटे। अब मैक परेशान हो जाता है। उस दिन मैक ये इरादा कर लेता है पक्का वाला कि आइंदा अगर वो एक दरख्त काटेगा तो उसकी जगह पर एक नया दरख्त लगाएगा ताकि जो है वो दुनिया दरख्त से खाली ना हो जाए, क्योंकि दरख्त के तो बहुत सारे फवायद हैं। तो बच्चों हमें भी जो है वो हमेशा दरख्त को लगाना चाहिए, उगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अतराफ में आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त हों, वरना हो गए कि एक दिन क्या होगा कि तमाम दरख्त ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें जो है वो अपनी दुनिया को, अपनी ज़मीन को बचाना है और दरख्त उगाने हैं और अपने माहौल को साफ सुथरा और हरा भरा रखना है। उम्मीद है आपको ये कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफ़िज़।
एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पर जिस तरह भी थोड़ी देर पहले गलगली यहाँ पर हमसे गिला मंद थे कि इनकी अम्मी ने घर में खाना नहीं बनाया, या फिर मिसाल के तौर पर मैं देखती हूँ कि भाई मैंने किसी का कोई काम कहा था करने के लिए, उसने मेरे लिए वो काम नहीं किया, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें तवक्को होती है किसी से तो वो काम अंजाम दे नहीं पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जहन के अंदर ख्याल घूमने लगते हैं, सोचते हैं हाँ भाई ये मुझे चाहता नहीं है, हाँ भाई ये चाहता ही नहीं है मेरे लिए काम करे, खुद ब खुद कुछ ख्याल बुनते हैं और पूरी कहानी खुद बनाते हैं और खुद ही उस कहानी के राइटर होते हैं और सुनने वाले भी खुद होते हैं, सब कुछ ठीक नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो आपको क्या करना है, आपको वजह मालूम करनी है, बिला वजह किसी के पीछे उसके खिलाफ, ठीक है, आप ऐसे ख्याल बिल्कुल भी मत रखिए, यानी मनफी ख्याल जहन में नहीं लाने चाहिए, ठीक है ना। और तुम फिर से उदास हो, क्या हुआ है हलवली? हाँ आज आप जा रहे थे फुटबॉल खेलने, हाँ तो फिर क्या हुआ, उदास क्यों हो? तुम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, हाँ तुम्हारे ऊपर वाले हमसाए, अच्छा वो एक एक करके सीढ़ी उतर रहे थे आराम आराम से और तुम्हें बहुत जल्दी से जाने की, अरे गिलगली तुम भी ना, तुम्हारे वो ऊपर वाले हमसाए हतमन एक बूढ़े ज़हीफ़ शख्स होंगे तभी तो वो सीढ़ियाँ इस तरह से उतर रहे थे, वो जवान है, जवान है सीढ़ियों से, हाँ लो शाबाश, उनके हतमन घुटने वगैरह में दर्द वर्द होगा इसलिए वो आराम आराम से उतर रहे थे, नहीं अरे जवान है इस तरह से है, अच्छा वो वर्जिश भी करते हैं, खिलाड़ी है, पता नहीं खैर वर्जिश खिलाड़ी, फिर आराम आराम से, भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल भी किसी किसी के खिलाफ जो है वो ख्यालात नहीं रखूँगी अपने जहन के अंदर, कोई ना कोई वजह होगी इस बात की, तुम भी नहीं पहुँच पाए वहाँ पर, ठीक है गलगली तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन देखो हर चीज़ के पीछे, हर बात के पीछे, हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और जब तक हम उस वजह को ना जाने तो हमें बिला वजह जो है वहाँ खड़े होकर अपनी तरफ से बातें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये होता है जनाब के जब हम देखते हैं कि भाई कोई चीज़ जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं चल रही है, या हम ऐसा चाहते थे या हमेशा ऐसा होता था आज नहीं हो रहा है, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तो देखो मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम जाकर देखें कि उनके साथ मसला क्या है, वो जवान शख्स थोड़ी कोई जानबूझकर तुम्हें तंग करने के लिए थोड़ी सीढ़ी से आराम से उतर रहे होंगे, ज़रूर कोई वजह होगी, ठीक है, तो हम इस वजह को ज़रूर मालूम करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जब मैं खुद छोटी थी, ठीक है, तो मुझे ये था कि जनाब मैं जाती थी बाहर रोड पर खेलने के लिए, मेरे भाई साहब जो है उस सामने गली जो होती है घर के, वो थे नहीं तुम बाहर बिल्कुल मत जाना ये वो। मुझे हमेशा ये था कि मेरा भाई कितना बुरा है, मुझे जाने नहीं देता, सारी चीज़ें अपने जहन के अंदर ख्यालात में रखती थी, मनफी ख्यालात थे भाई के लिए, ठीक। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, कुछ ही दिनों के अंदर गली के अंदर से एक चोर साहब जो है वो बच्चे को उठा कर ले गए, ठीक। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर जो है पकड़ लिया लोगों ने उनको, और वो जनाब बच्चे को बचा लिया गया। तो मेरा भाई मेरी खूबी चाहता था, मेरी अच्छाई के लिए मेरे भाई ने मेरे लिए काम किया था, ठीक है ना। अपने जहन के अंदर किसी के खिलाफ मनफी ख्याल रखना बुरी बात है, हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम भी मेरे ख्याल से देखो कि मसला यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा फुटबॉल मैच बहुत ज़रूरी था, वो आराम से एक 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 करके सीढ़ी उतर रहे थे, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है गैरखैली, लेकिन यकीन मानो ज़रूर ना ज़रूर उस बात के पीछे कोई वजह होगी जिस वजह से वो बेचारा शख्स इस तरह से उतर रहा होगा सीढ़ी से ही, ठीक है ना। दोस्तों खुश आमदीद कहती हूँ आपको एक बार फिर, और यहाँ मैं गैरखैली को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जनाब अगर आपको किसी से लगता है कि मिसाल कोई आपके हक में कोताही कर रहा है, या आपके हक में मिसाल के तौर पर या कोई चीज़ है सब वो साहब जो उतर रहे थे सीढ़ियों से और हमें पता नहीं अब तक क्या वजह थी उसके पीछे, वजह जानने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको वजह पता नहीं है, आप नहीं जानते उस शख्स के बारे में कुछ, आपको वो पूरी मालूमात उस शख्स के बारे में नहीं पता है, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप जो हैं वो अपने ज़हनी ख्यालात को उस शख्स के खिलाफ मनफी कर लें और कहें कि जनाब ये शख्स ऐसा है, ये मुझे चाहता नहीं है, मेरी अम्मी मुझे चाहती नहीं है, मेरी अम्मी मेरे खाना नहीं बना के ले जाती। वो अक्सर बातें जो गिलगली कहते रहते हैं, ठीक। गिलगली एक बात बताती हूँ, अगर तुम मेरे खिलाफ, ठीक है, अपने जहन के अंदर बुरे ख्याल रखोगे, तुम मेरे बारे में अपने जहन में जो है खुद बातें बनाना शुरू करोगे, तो वो ख्यालात हमेशा के लिए तुम्हारे जहन पर हावी हो जाएंगे, और उसके बाद मैं लाख तुम्हारे लिए अच्छाई करूँ, मैं लाख तुम्हारे लिए खूबी करूँ, तुम कभी भी मेरी खूबियों को नहीं देखोगे, अच्छाइयों को नहीं देखोगे, उन्हीं मनफी ख्यालात के अंदर घिरे रहोगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए। और अरे ये वही शख्स है वो जो इस तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप जी। हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल सब कुछ सब खैरियत। आप कैसे, आप ठीक हैं जी? बिल्कुल हाँ, ये गलगली बिल्कुल हम बच्चों के लिए प्रोग्राम यहाँ पर जी, बिल्कुल। अच्छा क्या आपके पैर में आजकल दर्द रहता है, लेकिन क्यों? हाँ वो मुझे बताया गलगली ने कि आप एक खिलाड़ी हैं, आप वर्जिश करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ओह कब? अच्छा लो सुनो तुम जी, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसी कह रही थी। हाँ ऑपरेशन करवाया आपने घुटने का? अच्छा अब तकलीफ भी होगी ना जी? बिल्कुल तकरीबन एक महीने तक ऐसा रहेगा आपका ये घुटना। चले इंशाल्लाह हम आपकी सेहतमंदी के लिए दुआ करते हैं, बिल्कुल जल्द से जल्द आप सेहत याब हो जाएं और इंशाल्लाह फिर से जो अपने वो खेल में आप फिर से मशगूल रहें, ठीक है ना जी। सलाम दीजिएगा सबको, खुदा हाफिज़ जी, खुदा हाफिज़ जी। ये देखिए देखिए लो, बोलो। हाँ बोलो। तो कह रहे थे लोग सीढ़ी से ऐसे ऐसे उतरते हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं जो खिलाड़ी हूँ ये जनाब ये भी फुटबॉल खेलते हैं, और कह रहे थे कि फुटबॉल के दौरान जब मैं गिरा हूँ तो मेरे घुटने में कुछ ऐसी चोट लगी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन करवाना है इस घुटने का। और आप खुद देखिए, घुटना इंसान का एक बहुत ही जिस्म का अहम हिस्सा होता है, हमारे पूरे जिस्म का वजन हमारे घुटने बर्दाश्त करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने इनको कहा है कि एक महीने तक आपने बहुत ही छोटे छोटे कदम उठाने हैं और आराम से चलना है आपने। जी आराम से बेचारा चल रहा था, वो छोटे छोटे कदम उठा के जो है वो बेचारे साहब सीढ़ियों से उतर रहे थे, और गिलगिली साहब यहाँ पर फुटबॉल खेलने के चक्कर में अपने जहन में ख्याल घूमते गए कि हाँ ये तो मुझे तंग करने के लिए सर आराम से उतर रहा था, ये जानबूझकर सीढ़ियाँ इस तरह से उतर रहा था। लो अब तुम्हें पता चली बात असली क्या है। अब देखो ऐसा ही होता है, यही होता है, और ये वो हालत है जब हम किसी के पीठ पीछे खुद अपने जहन के अंदर मनफी ख्याल ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें असली वजह पता ही नहीं होती कि क्या है दरअसल, ठीक। उस वक्त ये होता है, जब वो असली वजह सामने आती है तब हमें शर्मिंदगी का एहसास होता है और कहते हैं काश मैं ये काम नहीं करता, काश मैं इस शख्स के हवाले से ऐसी बातें नहीं सोचता, काश 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 काश। कोशिश कीजिए कि आपकी दुनिया जो है वो काश के अंदर महदूद ना रहे, लफ्ज़ काश में महदूद ना रहे, बल्कि आप कभी किसी के खिलाफ ऐसी बातें सोचे ही ना कि आपको बाद में शर्मिंदगी का एहसास हो, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर एक हिस्सा जबरदस्त सा, इसके बाद आपके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारी प्यारी सी ड्राइंग्स। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक खूबसूरत सी ड्राइंग बनाना सिखाएंगे और इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हुए आखिर किस तरह से इस ड्राइंग में रंग भरा जाए। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है ना, तो आइए मिलकर देखते हैं कि आज की ये ड्राइंग किस तरह से बनाई जाएगी और फिर किस तरह से इसमें प्यारे प्यारे से रंग भरे जाएंगे।
तो बच्चों एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने तफसीली गुफ्तगू की इस हवाले से कि जनाब हम किसी के खिलाफ कभी भी अपने जहन में मनफी ख्यालात नहीं लाएंगे वजह जाने बिना, ठीक है। जब तक हमें वजह का पता नहीं चलेगा कभी भी हमें इस बात का हक नहीं पहुंचता कि हम भाई उस शख्स के बारे में जो है बुरा भला सोचते रहें, ठीक है ना। एक बुरी बात है और इससे मैंने इस तरह बताया, खुद आपकी शख्सियत पर और खुद आप दूसरों की शख्सियत के बारे में बुरा सोचते हैं और उसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ता है, ठीक। वैसे ओ मुझे अपनी बहन को कॉल करना है, ठीक है। दोस्तों एक मिनट अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं अपनी बहन को एक फ़ोन करूँ। वो दरअसल उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो मैं देखूँ अब तक हुए कि नहीं। लगाते हैं फ़ोन को, एक मिनट। और जी और रिंग जा रही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। हाँ मैं प्रोग्राम कर रही थी, मुझे अचानक याद आया कि तुमने वो पैसे ट्रांसफ़र करने थे। क्या हुआ, तुमने ट्रांसफ़र किए? लेकिन अब तक क्यों नहीं किया? मैंने कहा था ना कर दो, तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। अरे ज़रूरत है लेकिन तुम, अरे बाबा एक मिनट रुको, बात नहीं सुनती है मेरी। हाँ बिल्कुल मेरी बहन है। अरे डांटे की तुम्हें बिल्कुल नहीं। बिल्कुल पैसे नहीं भेजे खाम खाम, ज़रूरत ही मुझे इस चीज़ की। अभी क्या करूँ मैं अब? खैर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। खाली खाली सोचो मैं क्या करूँ, ये तो जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है ना सर, बिल्कुल एहसास नहीं है जिम्मेदारी का। कितनी बार मैंने कहा है टाइम पर काम किया करो, तुम सुनती नहीं है। अब सोचो मैं क्या करूँगी। अगर थोड़ा सा तुम्हें एहसास हो ना इस बात का तब तुम समझोगे, अपनी बहन की मुश्किल को तुम समझती नहीं हो दरअसल। چلو کوئی رستہ نکالتے ہیں، میں کسی اور سے لینے کی کوشش کرتی ہوں. ایس ایم ایس کس کا ہے؟ دیکھو میں نے کیا کیا، دیکھو میں نے کیا کیا. او ہو، کیا غلطی کر لی میں نے. بینک سے میسج آیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پیسے تو صبح کے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ سسٹم میں خرابی تھی تو دیکھو پورے پروگرام میں کہہ رہی ہوں، پورا پروگرام میں غلطی کو بالکل اس سے فون کر کے معافی مانگوں. میں خود کہتی ہوں کہ برے خیالات مت رکھو، دیکھو خود میں غلطی کر بیٹھی. میں فون لگاؤں ایک منٹ اسے. رنگ جا رہی ہے. ریجیکٹ کر دیا، مجھے ریجیکٹ کر دیا. اوہ لو، معاملہ جو ہے بڑا گمبھیر ہو چکا ہے یہاں پر. اور تم نے میری بہن کو کیوں ڈانٹا؟ تم نے اتنی بری بری باتیں کیوں کہیں میری بہن کو؟ لو دیکھو کیا ہو گیا نا. خیر دوستو یہ لیجیے، مجھے بھی مل گیا سبق اس بات کا کہ جناب بہن ہو، دوست ہو، بھائی ہو، ہمسائے ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی اجنبی ہو یا کوئی آپ کا رشتہ دار ہو، ان کے خلاف اپنے ذہن میں ہمیں کوئی ایسے برے خیالات نہیں لانے چاہیے. اگر کوئی انسان کوئی کام نہیں کر پاتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ توقع جو آپ کو اس انسان سے ہوتی ہے وہ توقع آپ کی پوری نہیں کر پاتا ہے، یا شاید کر بھی پاتا ہے جیسے میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن کوئی مسائل کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے وہ چیز جو ہے اس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جائے، اس معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، تو جناب ہمیں ان کے خلاف ایسے خیالات نہیں کرنے چاہیے. یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے کسی کے خلاف کہ بھائی یہ شخص منفی شخص ہے، اس شخص نے ہمارے لیے کام نہیں کیا ہے، یہ شخص برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور جب اصلی وجہ سامنے آتی ہے تو پھر میری طرح، بالکل میری طرح شرمندگی کا احساس ہم سب کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. دوستوں میں آپ سے یہاں پر اجازت دیتی ہوں، خدا حافظی کرتی ہوں، جب تک اپنی بہن کو بنانے کی کوشش کرتی ہوں. خدا حافظ.